हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। स्कंद 7 अध्याय 15 और श्लोक संख्या हम आज 20 की चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम जो कि सभी पुराणों का वैदिक ज्ञान का सार है, अगर तुलना की जाए वृक्ष थे तो वृक्ष में इतनी सारी टहनियां डाल इत्यादि है, लेकिन उनकी तुलना कर सकते हैं वैदिक ग्रंथों से, लेकिन पके हुए फल को हम लोग श्रीमद् भागवतम से तुलना कर सकते हैं। इतना बड़ा वृक्ष होता है, इस वृक्ष में कितना कुछ है, फूल भी हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं, तो इसकी सारी तुलना की जाती है पूरे वैदिक ग्रंथों से कि सब कुछ है। बट अल्टीमेटली जो आम निकलता है इस फल में, तो खाने वाली वो चीजें आम के पेड़ के अंदर भी रहता है, लेकिन आप लकड़ी को चबा नहीं सकते, पत्ते को खा नहीं सकते, है ना। क्या खाएंगे आप? आम खाएं। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवतम जो है हमारे 18 पुराण, उपनिषद और वैदिक ग्रंथ, इन सबका क्या है? पका हुआ फल है आम, कच्चा आम भी नहीं है, पका हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, उसमें से हम लोग 7वें स्कंद तक पहुंच गए धीरे धीरे, लगभग 350 से भी ज्यादा अध्याय है और 18,000 लगभग श्लोक है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाएं और उनके साथ उनके भक्तों की सुंदर लीलाएं और वैदिक ग्रंथों का साथ सारा कुछ इसमें मिल रहा है। तो कई बार लोग कहते हैं मुझे भागवत क्या होता है, नए नए लोग बोलते हैं भगवत गीता क्या होता है, तो पूछते भागवत पढ़ा है आपने, तो कहते हैं हाँ भागवत तो पढ़ा है, बट वो भगवत गीता से अब उसको वो कर रहे होते हैं कंप्लीट। तो भगवत गीता वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5,000 साल पहले क्या किया, अर्जुन को सुनाया कुरुक्षेत्र में। उसमें अपने विषय में अर्थात ईश्वर, जीव के विषय में, कर्म के विषय में, प्रकृति के विषय में और गुणों के विषय में, समय काल के विषय में बताया, अपने ध्यान के विषय में बताया, भगवान को कैसे प्राप्त करना है वो सब बताया। और श्रीमद् भागवतम भी कब बोला गया? भगवद्गीता के बाद, जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान कर्म आदि से है, सब कुछ ज्ञान कर सब ले गए भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद परीक्षित महाराज जब राजा बने, उनको 7 दिन का समय मिला एक श्राप के अनुसार कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब किसी को पता चल जाए कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो राजा थे, कुछ प्लान नहीं किया कि मैं ऐसे बच जाऊंगा, ऐसा कमरा कर लूंगा, तुम तक्षक आएगा, नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, किसी भी मरणासन मृत्यु की जो नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार इस जिज्ञासा के साथ राजपाट का त्याग करके नदी किनारे, गंगा किनारे बैठ गए और वहां पर आगमन होता है शुभदेव गोस्वामी का, जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं। 13 साल गर्भ में ही रहे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन जब एश्योरेंस मिला भगवान के द्वारा तो फिर बाहर आए भी, लेकिन घर में नहीं रुके, सीधा वनों की तरफ चले गए। क्यों चले गए? कि मैं इन झंझटों में नहीं पढ़ूं, मैं बस कृष्ण का स्मरण करूं और फिर उनकी लीलाओं का स्मरण करूं, ध्यान करूं। तो ये शुभदेव को स्वामी स्थिति का भ्रमण करते हुए कहां पहुंच गए? उस सभा स्थल में पहुंच गए जहां परीक्षित महाराज तप के लिए बैठे थे, श्रवण के लिए बैठे थे। तो वहां पर शुभदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या विधि है, क्या विधान है, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए। मेरे पास केवल 7 दिन है, उन्होंने बोला, अपने पास तो ज्यादा है ना। उनका तो पता था 7 दिन से पहले नहीं आएगी, कि हम बोल सकते हैं कि हमारे 7 दिन से पहले नहीं आएगी, तो हमारे को तो ज्यादा वो हो जाना चाहिए चिंतित। और वैसे सबको 7 ही दिन मिले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इन 7ों में इनकी मृत्यु हुई है सबकी, है कि नहीं? तो कितने दिन हमारे पास? 7 दिन ही। तो लेकिन हम शुभदेव परीक्षित महाराज की तरह जिज्ञासु नहीं है, कथा के प्रति रुचि नहीं है, और क्या है, संसार के प्रति रुचि है, और कब कहां किस मोड़ पर, है ना, मैं निकला गड्डी लेकर, एक मोड़ आया वहां पर मृत्यु मिल गई। ऐसा कभी भी हो सकता है किसी के साथ, है कि नहीं? तो हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है, सबके नंबर आ रहा है, सबको जाना है, लेकिन हर एक को लगता है मेरे लिए नहीं होगी। तो फिर शुकदेव गोस्वामी ने बताया उनको सारा का सारा, कृष्ण की लीलाएं बताई कि भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण के अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो अभी ये जो सातवां स्कंध है इसमें भगवान के एक विशेष रूप के विषय में चर्चा हुई। कौन सा? नरसिंह अवतार। क्यों लिया कि नरसिंह जी ने अवतार? क्योंकि भक्त थे बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज, 5 साल के। नरसिंह जी ने तपस्या करी, उन्होंने हिरण्यकश्यप ने, और वरदान प्राप्त कर लिया कि मैं मरू ना कभी, कभी ना मरू, तक्षक से भी ना मरू, है ना, सांप से ना मरू, बिच्छू से ना मरू, ह्यूमन बींग से ना मरू, देवताओं से ना मारा जाऊं, हर तरह की उन्होंने चीजें मांगी। क्योंकि ब्रह्मा जी से डायरेक्ट वरदान नहीं मिला कि मैं अमर रहना चाहता हूं, तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मेरे पास भी इसका लाइसेंस नहीं है, मेरे भी जब 100 पूरे होते हैं तो मुझे भी जाना होता है। तो मेरे ठीक है, ऐसे नहीं बोलते तो ऐसे कर लेते हैं, मैं कहते कान ऐसे ना पकड़कर ऐसे घुमा के पकड़ लें। तो अब इतनी शक्ति किसी के पास आ जाए कि मर ही नहीं सकता, मतलब किसी भी तरह से, देवता थे, असुर इत्यादि थे, किसी से भी, सबको डर था, सब डरते थे हिरण्यकश्यप से। अहंकार जो था सातवें आसमान पर था, और प्रहलाद महाराज पूरा संसार उनकी पूजा कर रहा है, उनसे डर रहा है। उनके घर की एक संतान निकल आई, जिसने क्या बोला कि मैंने सुना है तत् साधु मन में असुर वर्य देही नाम है, असुर असुरों में श्रेष्ठ, मैंने साधुओं के मुख से सुना है। क्या सुना है? कि ये जो संसार है बड़ा ही डिस्टर्बेंस वाला है, दुखों और तकलीफों वाला है, हर समय यहां पर संघर्ष ही संघर्ष है। कहते अच्छा, और क्या सुना है? कहते इसलिए आदमी को क्या करना चाहिए, तो आत्मपातन ग्रह अंधकूपम, जो ग्रह है घर, जो कि एक अंधे कुएं के समान है। अंधा कुआ इसलिए बोला है, अब कुएं की आंखें थोड़ी होती है, अंधे का मतलब यह हुआ कि जब हम कुएं को देखने का प्रयास करते हैं तो उसका एंड नजर नहीं आता, इसको अंधा कुआ बोला जाता है। मतलब जब कोई गिरता है तो आवाज ही नहीं आती, ढका हुआ, वो भी साइड है, वो हम भी बताते हैं कि जिस प्रकार हाथी की गति को पकड़ने के लिए भी एक जाल बिछाया जाता है, घास इत्यादि लगाई जाती है और ऊपर से गिर जाता है, दिखाई नहीं देता, या ऐसा कुआं जो वृक्ष वर्षा इत्यादि होने के बाद लताओं से पताओं से ढक गया, चलता हुआ व्यक्ति उसमें घुस जाता है तो उसमें गिर जाता है। लेकिन कई बार वैष्णव लोग बताते कि ऐसा गहरा कुआं है कि जिसमें निकल ही नहीं पाता व्यक्ति, अंधकूपम, इतना गहरा है। तो गृह अंधकूपम बोला कि गृहस्थी व्यस्ती के चक्कर से निकलो, क्योंकि इसमें घुसने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसको कोई ना कोई काम याद आता रहता है, ये करना है, फिर वो करना है, फिर बच्चों की शक्ल देखनी है, फिर पोतों की शक्ल देखनी है, फिर उनकी भी शादी करा दूं। कई बार देखना हमारे घर में होता है, दादी दादा नाना नानी क्या देखना चाहते हैं, शक्लें देखना चाहते हैं, और उसके बाद और भी देखना चाहते हैं, और अगर उनको लगता है कि अभी बहुत 2-4 साल बचे हैं तो कहते हैं इसकी शादी करा दो जल्दी से, इसकी भी शादी देख ली कम से कम, अगर उसकी शादी भी हो गई तो कहते चल जल्दी से संतान भी दे दो, चाहे 16 साल 17 साल का करा दो, कई बार ऐसा भी हो जाए। तो व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त नहीं होती इस संसार को देखने की। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए क्या करना चाहिए, हरि का आश्रय लेना चाहिए, प्रहलाद महाराज कहते। तो घर में एक संतान निकली, वो भी भगवान को डिवोटेड, बाकी सारा संसार उनसे डरता है, उनकी बात मानता है, तो ये प्रसंग चल रहा था। तो बता रहे 5 अध्यायों में तो हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के विषय में बताया, और 5 अध्याय में प्रहलाद महाराज के गुणों के विषय में बताया। अब युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे, क्योंकि नारद मुनि से उन्होंने बोला भाई हमारी स्थिति क्या है, हम राजा हैं, गृहस्थ में हैं, आपने बता दिया, प्रहलाद जैसे भक्ति भी नहीं कर सकते क्योंकि उस तरह का स्तर नहीं है, और क्या करें फिर हम जैसे लोग, तो हमें कुछ बताइए कि हम कैसे करें। ये वर्ण आश्रम के विषय में कुछ बताइए, क्योंकि हम वर्ण और आश्रम में फंसे हुए हैं ना। कोई लोग ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, किसी न किसी स्पिरिचुअल कैटेगरी में, और आश्रम में कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी। तो फिर नारद जी ने ये सारे सिस्टम्स बताने शुरू किए। और अब जो आखिरी अध्याय है उसमें बोला गया है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। ये जो अध्याय है तो उठिएगा नहीं, क्योंकि कोई लोग सोच सकते हैं कि सुसंस्कृत वालों के लिए, तो ये उपदेश केवल वो सुनेंगे। तो ये सुसंस्कृत बनने के लिए भी है, और कोई ऐसा ना हो कि ये सोचे कि खाली संस्कृत जो जानता उसी के लिए है। नहीं, हिंदी में अनुवाद है सब कुछ है। तो यहां पर इस अध्याय में अब जो इन श्लोकों में जो बात चल रही है, और विशेषकर जो आज के श्लोक में बात चल रही है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक को हमारे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। भयं क्रोधस्य फलोदयात् जनो याति न लोभस्य चित्वा भुक्त्वा दिशो भवा। क्षमा कीजिएगा, कामस्य इंद्र तृप्ति या शरीर की किसी अविलंब आवश्यकता के लिए इच्छा का अंतम अन ही निसंदेह शुक्तभ्याम भूखे या प्यासे के द्वारा क्रोधस्य क्रोध का एतद् यह फलोद्याद त्वताड़न का उदय होने तथा उसके फल से जन मनुष्य याति पार कर लेता है ना नहीं लोभस्य लालच का जित्वा जीतकर भुक्त्वा भोगकर दिशा सारी दिशाएं भुआ भूमंडल की। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएं तथा आवश्यकताएं भोजन कर लेने के बाद निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। लेकिन जहां तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी तुष्ट नहीं होता। तत्परमेश्वर जी कहते हैं भगवद गीता अध्याय 3:37 में कहा गया कि संसार में काम क्रोध तथा लोभ बद जीव के बंधन के कारण होते हैं। काम ईशा क्रोध ईशा रजो गुण समुद्भव। जब इंद्र तृप्ति के लिए प्रबल विषय वासना की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध तभी शमित होता है जब वह अपने शत्रु को प्रताड़ित कर लेता है, किंतु जब लोभ बढ़ जाता है तो भला मनुष्य कृष्ण भावनामृत में किस तरह प्रगति कर सकता है, क्योंकि लोभ रजोगुण से उत्पन्न सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के लिए अत्यधिक लोभ करता है तो यह महान वरदान है। तब लोलमेकलम मूल्यम, यह सर्वश्रेष्ठ सुलभ मार्ग है। ओम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Namo Vishnu Padaya Krishna Krishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
हरे कृष्णा। इससे पिछला श्लोक जो है उसका केवल मीनिंग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने भी प्रकट नहीं दिया। भक्त या ब्राह्मण जो आत्मतुष्ट नहीं होता उसका आध्यात्मिक ज्ञान विद्या तपस्या तथा कीर्ति उसकी इंद्रिय लोलुपता के कारण क्षीण हो जाते हैं और उसका ज्ञान शने शने लुप्त हो जाता है। इससे पिछले श्लोक का खाली अनुवाद पढ़ रहे हैं जो कल हुआ था। हे राजन, आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चलित है, विशेष रूप से जो जीव और जनेन्द्रियों के वश में होता है, उसे अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। तो इन तीन चार श्लोकों में लोभ के विषय में बताया गया, असंतुष्ट व्यक्ति के विषय में बताया, और आज अनुवाद में यह भी बताया गया कि अगर किसी के पास दो एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि भूख का, अगर किसी को बहुत तेज भूख लगी है तो यह तब तक है जब तक कि वो कुछ ग्रहण न कर ले। भूख लगी है, आपके पास सामने व्यंजन आ गए, आपने खा लिया तो भूख तृप्त हो गया, तृप्त हो चुके, तुष्ट हो गए। भूख के ही एग्जाम्पल को कई बार हरिनाम समझाने के लिए लेते हैं, भागवतम में कहीं आता है कि जैसे भोजन करते हैं तो उससे तीन चीजें प्राप्त होती हैं, क्या क्या? तुष्टि, तुष्ट होता है व्यक्ति, पुष्टि, शक्ति प्रदान होती है, ऊर्जा मिलती है, और स्वाद, है ना? तो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। उसी तरह हरिनाम जब व्यक्ति लेता है तो उसको भी हरिनाम लेते लेते तुष्टता मिलती है, संवर्धन होता है, पुष्टि मिलती है और एक टेस्ट डेवलप होता है। ऐसा टेस्ट जिस टेस्ट की वजह से फिर इस संसार के टेस्ट खत्म हो जाता है। बोलते हैं ना भगवद्गीता में रसवर्जन रसपर्जन, उच्च स्वाद प्राप्त होने पर लोअर टेस्ट जो है वो अपने छूट जाते हैं। तो एक तो ये बताया कि भूख और प्यास से जब कोई व्यक्ति पीड़ित है तो पानी मिल जाएगा तो प्यास बुझ जाएगी, भूख लगी है खाने के बाद भूख मिट जाएगी। फिर क्रोध की भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित है तो क्रोध में संतुष्ट कैसे होता है? क्रोध जब वो किसी को प्रताड़ना दे देता है, मार देता है, पीट देता है, किसी पे क्रोध आया, गाली दे दी, खूब बोल दिया, कुछ ना कुछ मन को संतुष्ट कर लेता कि मैंने बोल डाला इसको, मैंने भी सुना डाली इसको, और फिर कुछ समय के बाद उसका क्रोध शांत हो जाता है। तो क्रोध को बताने ऐसे शांत हो जाता है जब उसका फल देखता है, या किसी को खाली आंखें दिखाई दे और डर के भाग गया तो उसको लगता है मैंने जो क्रोध दिखाया हो गया संतुष्ट, और संतुष्ट होने के बाद ठीक हो जाता मामला। फिर बाद में पता चलता हो कितनी बड़ी गलती कर दी, किसको क्या बोल दिया, वो बहुत गलत गलत शब्द बोल दिए, तो बात का सीन। जैसे दक्ष प्रजापति और शिव में भी प्रॉब्लम हो गई थी एक बार, है ना? दक्ष प्रजापति खूब जो है अपराध करते थे शिव के प्रति, तो शिव जी ने भी एक बार फिर क्या किया, जब सती ने अपने को स्वाहा कर लिया तो खूब झगड़ा हुआ, और फिर ऐसे ऐसे लोगों को भेजा मार पिटाई के लिए, उन्होंने अपने बदमाश बुलाए सारे शिव जी ने, कहा जाओ कर दो उनका काम तमाम, वहां पर जाके खूब खत्म किया लोगों को। पर दक्ष प्रजापति ने भी उल्टा सीधा किया, फिर शिवजी ने भी बहुत हाहाकार मचाया, फिर बाद में शांत हो गए, ठीक है करने के बाद शांत बैठ गए जाके, तो क्रोध शांत हो गया था उनका, गुस्सा बहुत था कि उनकी वाइफ, उनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी है ना, उसको आत्महत्या करनी पड़ गई दक्ष प्रजापति की वजह से, तो बहुत क्रोध था। लेकिन ये सब करने के बाद फिर शांत हो गए और अपने कैलाश में जाकर फिर से ध्यान में लग गए। तो जब ब्रह्मा जी इत्यादि सब आए, दक्ष प्रजापति को समझाया कि क्या कर दिया तुमने, है ना, फिर चल के माफी मांगी, तो अगर ठीक है सोते ना तो सामान वापस दे दिया, जिसका जो काटा पीटा था सब बराबर कर दिया, दस प्रजापति को भी बकरी का सर दिया उनको, ऐसा कर तो सब ठीक कर दिया। तो क्रोध भी सेटिस्फाई हो जाता है उसका फल देखकर, चलो माफी मांगने आ गया चलो ठीक है, मैंने उसको डरा दिया डर गया चलो ठीक है, उसने मुझे क्रोध दिलाया मेरा काम नहीं किया तो मैंने उसकी पिटाई की पिट गया मेरे से तो ठीक है। तो ये क्रोध की सेटिस्फेक्शन बता रहा है, इस तरह क्रोध सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन तीसरी बात यहां पर क्या कर रहे हैं, लेकिन जहां तक लालच की बात है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को जीत ले या संसार के प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी संतुष्ट नहीं होगा। किन की बात कर रहे हैं? ठीक है, हमारी बात हो रही है वैसे। लोभ, ये लोभ ही तो है जो हम लोगों को इस संसार में बनाए रखे हुए, हमें चलायमान रखे हुए। जैसे गधा जब चलता नहीं है तो उसके आगे ब्रेड का टुकड़ा बांध के लटकाना पड़ता है और व्यक्ति ऊपर बैठ जाता है, उस ब्रेड को खाने का लोभ है उसको, तो वह एक कदम आगे बढ़ाता है तो ब्रेड और आगे चली जाती है क्योंकि तो लकड़ी लेके बैठा है, दूसरा कदम बढ़ाता तो और आगे चला जाता है। वो जो लोभ है उसका, वो उसको लोभ लेके चलता रहता है, वो हाथ में नहीं आती उसके, है कि नहीं? तो बताते शास्त्र में हर इंद्री का लोभ है, आंखों का भी लोभ है, आंखों को कुछ अच्छा लगता है बाहर देखना चाहता है, कई कई किसी को लगता है कि लोभ अच्छा मुझे तो नहीं है, मुझे तो धन का इतना वो नहीं है, इनको है धन का मुझे नहीं है, तो इस तरह से वो अपने को सर्टिफिकेट तुरंत दे देता है मैं प्योर डिवोटी। लेकिन हर इंद्री का अलग लोभ है। शास्त्र में श्लोक आता है, पतंग मातंग कुरंग भिंग मीन हताल पंच विरेख पंच एकम परमात्मी कथन न हन्यते या सेवते पंच विरेख पंच। हमारे पांच इंद्रियां जो हैं उनकी तुलना की जा रही है पांच प्रकार के जीवों से। क्या है? एक पतंग, मौत, पतंगा होता ना, क्षमा हूं मैं परवाना हूं, परवाना जैसे बोलते हैं पतंग, वो कैसे मौत के मुंह में आता है? वो अग्नि का दर्शन करता है, आप उसकी आंखों को इतनी सुंदर लगती है उसको गले लगाना चाहता है, उसके आसपास डांस करता है, वो हीट लग रही है उसको बट वो रोक नहीं पा रहा अपने को, कहते इतनी आकर्षक चीज, इतनी लाइट निकल रही है इसके अंदर से, कहता है चलो जब भी पालू। तो जैसे ही वो आग को गले लगाता है, आग उसको क्या किसमें तब्दील कर देती है? राख में तब्दील कर देती है। ये है आंख पतंग, अर्थात पतंगा अपनी आंखों से अपनी मौत को इनवाइट करता है। पतंग मातंग, मातंग बोले तो एलिफेंट, इतना बड़ा विशाल हाथी किसी के काबू में नहीं आ सकता, दो चार छह दस कितने लोगों को मार दो, सूट हिलाकर किसी को सूरमा बना दे ऐसा करके कुछ भी कर सकता है, लेकिन चार फुट का आदमी उसके सर पर बैठा होता है तो जहां चला चलता है, ऐसा क्या उसके अंदर गुण है भाई? तो पता चलता है कि ये हाथी है, ये अपने स्पर्श के कारण मारा जाता है, इसको दूर से हथनी दिखाते हैं, पेड़ के साथ बांध देते हैं हथनी, और हथनी के आगे एक बहुत बड़ा खड्डा कर देते हैं और उसका अंत खूब बनाया जाता है, मतलब वृक्ष इत्यादि से टहनियों से उसको ढक दिया जाता है घास इत्यादि से। हाथी दूर से देखता है, वो मतवाला हो जाता है और क्या करता है, वो उसको प्राप्त करने के लिए भागता है उसकी ओर, और जैसे जाता है अचानक उस खड्डे में गिर जाता है। अब क्या करता है वो महावत, उसको कई दिन तक भूखा रखता है, उसकी फास्टिंग होती रहती है कई दिन तक, एकादशी फास्टिंग, आचार्यों की फास्टिंग सब होती है, और बाद में वो हंबल बन जाता है, इतनी फास्टिंग करेगा तो हंबल तो बनेगा ना, टॉलरेंस भी आती है, हंबल भी बन जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी सीख जाता है, तो फिर छोटा सा महावत कहता है जो आप बाहर आ जाओ, और फिर इसको चलाता है कि नहीं? तो मातंग
तीसरा है कुरुंग अर्थात हिरण, स्मेल। हिरण जो है कस्तूरी उसके अंदर ही होती है लेकिन उसको स्मेल आती रहती है, वो उसको ढूंढने के लिए प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है, भागता रहता है, और हिरण को शिकारी आता है और उसको मार देता है, या फिर उसको कई बार बताया जाता है कर्णों के द्वारा, कुछ कर्ण प्रिय चीजें लगती है, म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है उसका, तो वो बड़ी सुंदर बांसुरी बनाए जाते हैं, वो वहां पहुंच जाता है तो मार देता है। तो ये कान के द्वारा या स्पर्श के द्वारा, हनी भी पेज के द्वारा कौन है भेंग, तो वो क्या करती है एक सुंदर से फ्लावर देखती है जो सूर्य की रोशनी में खिल जाता है और उसके अंदर जाके घुस जाता है, बंबल बीज जिसे बोलते हैं और भवरा जिसे बोलते हैं, वो उसका रस का आस्वादन करता है, इतना सुंदर लग रहा होता है, इतना टेस्टी लग रहा होता है, उस सारे पकवान फीके होते हैं उसके लिए। इसके अचानक क्या होता है, धीरे धीरे संध्या होने लगती है, संध्या होती है तो फूल अपने को बंद करना शुरू करता है, लेकिन उसको सुख इतना प्यारा लग रहा होता है, इतना आनंद आ रहा होता है कि उसको त्याग नहीं कर पाता, उसको दिख रहा है कि धीरे धीरे मुझे झकड़ रहा है, पर फिर भी उसको टेस्ट आ रहा होता है इसमें, और फिर क्या होता है फूल पूरी तरह से बंद हो जाता है और बेचारा वो भाई अंदर ही प्राण त्याग देता है। मीन भी समुद्र में सब कुछ खाने के लिए उसके पास छोटा सा टेस्ट के लिए वो कुछ करता है और उसके द्वारा फंसा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो पांचों इंद्रिय हैं, कान नाक आंख जीव और त्वचा, ये अपने अपने विषयों का ध्यान करते हैं और उसकी वजह से नुकसान क्या होता है कि हम लोग लोभ में फंस जाते हैं और अधिक करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए बोला जाता है ये इचिंग खुजली के समान है, इसको थोड़ा सा खुजला दो तो अच्छा लगता है कि नहीं, खुजली करना अच्छा लगता है, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर उसको बताती कि अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा और कर ले, वो और करता है उसको, और करता है और करता है, करते करते वो उसको छीन देता है, उसको घाव बना देता है, अचानक वो इतना दर्द करने लगता है कि अब हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। तो उसी प्रकार इंद्र तृप्ति जो है हमारे इस लोभ को बढ़ाता है। जैसे एक बार एक लोभी व्यक्ति था, कुछ नहीं करता था, उसकी वाइफ कहती जाओ ना जाओ कुछ करो, वो कहता है ठीक है क्या करना, तो कहते राजा है ना हमारा बड़ा दयालु, उसके पास जाओ। तो राजा के पास जाता है, राजा बड़ा दयालु, जो जो मांगता उसको दे देता। उसने कहा जी मुझे भी कुछ चाहिए, कहते क्या चाहिए, कहते मुझे जमीन चाहिए, कहते ठीक है कल सुबह आना सूर्योदय के टाइम पर। तो सूर्योदय के टाइम पर पहुंचता है, राजा कहता है ये पकड़ो ध्वज, एक झंडा देता है उसके हाथ में और कहता जिस दिशा में भागना भागो, शाम तक सूर्य अस्त होने से पहले झंडा गाड़कर इधर आ जाना, तो जहां तक गंजा गाड़ा है और जितना एरिया तुमने कवर किया है उतना सब तुम्हारा। राजा बोलता है और उन्हें देखकर गायब होता है, झंडा लेके भागना होता है, भागना शुरू कर देता हूं। अब सबको मालूम है प्रॉपर्टी के इतने हाई है तो भागते हैं, खूब भागता है, बिना खाए बिना पिए, उसको मालूम होता है मैं कहीं रुक गया तो पता नहीं 100 गज कम हो जाए, अगर इसके लिए रुक गया तो पता चले 200 गज कम हो गया, इसके लिए रुक गया तो लगभग कितना टाइम चल जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा इसको, तो लगभग एकड़ में जमीन चली जाएगी, तो वो भागते रहता है कहीं नहीं रुकता, इतना भागता है इतना भागता है। लोग उसका कहता है कि थोड़ा सा और कर लेता हूं, अब थोड़ा सा और कर लेता हूं, तो अचानक देखता सूर्य तो सर पर आ गए भाई, कहते कोई बात नहीं बस थोड़ा सा और, क्योंकि अब तो गुड़गांव पहुंचाऊ है ना, तो उधर की जमीन बहुत महंगी है, थोड़ा सा और, एक एक कदम मतलब एक एक मीटर, थोड़ा सा और करते करते और अंत में देखते सूर्य तो बिल्कुल सामने आ गया, ये तो डूबने को हो गया, तो फिर वो यूटर्न लेता है और अब उसकी हालत क्या होगी, अब सोचिए कोई इतना भाग ले जिसे कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कोई मैराथन नहीं किया उसने, कोई उसकी सुबह कोई एक्सरसाइज नहीं, अचानक भाग रहा है और सुबह से लेकर इतना तेज भाग रहा है, कहीं रुक नहीं रहा, खाया नहीं पिया नहीं पानी नहीं पिया, एक एक एकड़ जमीन नाप रहा है बस, और अब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कोशिश तो करेगा बहुत तेज वापस आने की, तभी मिलना ही सर। लेकिन हुआ क्या, इस लोभ के कारण जो इसने कवर करने की कोशिश करी वो रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। राजा अपने घोड़े पर आया, वजीर को कहा यहां पर 6 फीट की जगह का खड्डा खोदो, इसको हिला दो। इतने चाहिए होता आदमी, तो ये लोभ है, ये लोभ हम लोगों को क्या करते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और कर करके हमें बढ़ाता रहता है और इस प्रकार हमारा अंत नहीं होता। जैसे कई बार सुना है आपने, सुना ही होगा, जैसे एक बार व्यक्ति तपस्या करता है ना, साउथ इंडियन एक डिवोटी तपस्या कर रहा था, खूब तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न होते, कहते मांगो क्या चाहिए, कहते सर मैं जहां भी जाऊं मुझे लोग सांवला बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, रंग ठीक नहीं है, कहते क्या चाहिए, कहते मुझे गोरा कर दो, तो गोरा कर देते हैं। उसके साथ वाला भी तपस्या कर रहा होता तो वो भी कहता था मेरे लिए हालत है, मुझे भी सुंदर कर दो, उसको भी सुंदर कर दे। तो एक लोभी व्यक्ति बैठा होता है, वो हंस रहा होता है, भगवान कहते तू क्यों नहीं मांगते, तू भी मांग कुछ, कहते नहीं, वो हंसी रहा होता है, कहते कुछ तो मांग, कहते इनको फिर से काला कर दो, क्योंकि दूसरे के पास भी अगर कुछ होता है ना तो ये लोभी व्यक्ति चिंतित रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। हम लोग दुखी तो हैं, परेशान तो हैं, कई बार अपनी परेशानियों से नहीं है, दूसरों की परेशानी से, किसके पास ऐसा क्यों, इसके पास इतना क्यों। तो इस प्रकार लोग जो हैं दूसरों का नुकसान करवा देते हैं, इसको लगा यार अपने को कुछ आए नहीं, तपस्या भी करी, उनके चक्कर में मैं भी रह गया, तो दोबारा तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आज अकेले ही, कहते हैं हाँ पिछली बार का वरदान गलत हो गया, दूसरों के लिए मांग लिया मैंने, तो कहते चलो आज अपने लिए मांग लो, कहते हैं लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी ना नेचर ठीक नहीं है, तुम जो अपने लिए मांगोगे जितना मांगोगे उसका डबल मैं दूसरे को दे दूंगा। तो बड़ा परेशान होता, कहते ये तो बड़ी अच्छी कंडीशन लगा दी, अब मैं 1 करोड़ मांग लूं तो 7 लाख 2 करोड़ मिल जाएगा, 4 करोड़ मांग लूं तो 8 करोड़ मिल जाएगा। तो बड़ा परेशान, तो बड़ा सोचता, फिर आखिर में बोलते सर मेरी 1 आंख फोड़ दो। तो इससे क्या होगा, मैं तो चलो आंख से देख लूंगा, एक वो तो अंधा हो जाएगा। तो हमारे पास भी 5 इंद्रियां हैं, मन है, लेकिन इन सबका अपना अपना एक विषय है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगास देश को जाएगा, कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, जब ये सेंस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्शन करती है, जब मिलती है, तो क्या होता है, वहां से केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, कुछ चीज जीवा पर लगे तब स्वाद पता चलता है, कुछ स्पर्श चीज हाथ को लगे, कोमल चीज लगे तब पता चलता है, ज्ञानेंद्रियां ही। और इस प्रकार हमारा लोभ, हमारा मन हमें कहता है ये दिल मांगे मोर, और मांगता है और चाहिए। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि व्यक्ति जो है इंद्र तृप्ति की अग्नि में जलता रहता है, और उसको तर्पण करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए ये ठीक उस प्रकार है जैसे अग्नि, और अग्नि में कहते हैं आप जितना मर्जी फ्यूल डाल दो तो क्या होगा, वो और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो वो डिजायर, वो लोभ हमारा खत्म नहीं होता, हम जितना मर्जी उसको पूरा करने की कोशिश करें, उसका एंड रिजल्ट दिखता ही नहीं। और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो मनी ओरिएंटेड रहता है, धन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और ये धन क्या करता है, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो अपना काम धंधा बंद नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट बंद हो क्या, अंबानी ने काम करना छोड़ा क्या, पैसे की कमी है क्या इनको, नहीं, नेम चाहिए, फेम चाहिए, धन की अब लिमिट नहीं है, उस पोजीशन को बनाए रखना है जहां पर हूं। जैसे न्यूज़पेपर में पता चलता है कि ये व्यक्ति आ गया, इसको पिछाड़ के ये आ गया, वो कहते हैं जो छुपा रखे वो भी निकाल दो, चलो फिर वो पर आ जाता है, खत्म ही नहीं हो रहा, लोग खत्म नहीं हो रहा। एक भिखारी को 1000 रुपए का नोट मिल गया था, रोज मंदिर के बाहर बैठता था, अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, कुछ ना कुछ गुणगान करता था, लोग पैसे देते थे, प्रसाद देते थे, बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था। चलते चलते घर वापस जा रहा था, 1000 रुपए मिल गया उसको पड़ा हुआ, 1000 का नोट। भिखारी को जिसको 5 रुपए 10 रुपए नहीं मिलते थे दिन में, ऐसे देखा चमका कर देखा, सब देखा असली है, और उसको लगा के रखा सीने से। घर पहुंच गया, नींद नहीं आ रही थी, कहां रखूं कहां छुपाऊं, तकिए के नीचे छुपाऊं तो थोड़ी देर बैठ के देखे को पड़ोसी ने छीन ले, फिर देखा है, फिर कहा यहां से कोई ले सकता है, इधर रख लो, फिर देखता था यहां से तो किसी ने चुराया, रात भर नींद नहीं आई उसको, 1000 के नोट के चक्कर में देखता रखा था साथ में है कि नहीं। सुबह हो गई, कहता अब कौन जाएगा भीख मांगने, आए काम पर हम नहीं जाएंगे आज, 1000 का नोट है। तो करता रहा देखता रहा उसको, 6 बज गए 8 बज गए 10 बज गए, सुबह का टाइम निकल गया 12 बज गए, कहते चलो कुछ खा के तो आऊं, खर्च के तो आऊं उसको, ऐसे चल रहा था। फिर निकला, फिर देखा अचानक हवा तेज चली, उड़ गया वो, भागा उसके पीछे, भागता रहा वो पुल से नीचे पानी में चला गया, कहता रे बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया उसका, जब मैं लाखों का नुकसान हो गया, मैं दिवालिया हो गया, परेशान हो गया, मैं दुखी हो गया, 1000 का नोट चला के कल से देख रहा था उसका दर्शन कर रहा था। फिर वापस आता है कहां मंदिर, ये जय 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 फिर शुरू करता नाम। लेकिन कहते यार एक चीज समझ आ गई इसे, अच्छा गलत जीवन चल रहा था मेरा, रोज टाइम से जॉब पर आता था, बढ़िया खाने को मिलता था, भगवान का गुणगान भी हो जाता था, ये 1000 के नोट तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। कहते कल से शाम से मेरे हाथ में था, सुबह 12 बजे कोई काम नहीं किया मैंने, रात को सोया भी नहीं, यहां भी झपकियां ले रहा हूं, कितनी बुरी स्थिति है मेरी। कहता हे भगवान ये दोबारा मत मेरे साथ कराना, बड़ा नुकसान हुआ इससे। कहता लेकिन एक चीज उसको और भी लगा, कहता मैं तो चलो 1000 के नोट से परेशान था, कहता उनका क्या होगा जिनके पास और भी 1000 के नोट है, और जो और भी चाहते हैं अभी और चाहिए और चाहिए। कहते हैं ये 10-12 घंटे मेरे पास 1000 का नोट था, मैं भगवान को भूल गया, जिनके पास इतना है वो याद कर पाएंगे क्या, नहीं, बड़ा मुश्किल है। और सुबह से लेकर शाम तक हम किसके पीछे भागते हैं, इन्हीं 1000 के पीछे। तो कहने का क्या मतलब है, जी लो है, इसका कोई लास्ट डेट नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। कई लोग स्टडीज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ते 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 भी इतनी सारी डिग्री से एक बार किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, अब मैंने कहा इसका नाम तो ऊपर लिखा लेकिन इतनी सारी डिग्रीज थी उसमें। कुछ लोग जॉब बदलते हैं, यहां ठीक नहीं है, यहां पे स्केल ठीक नहीं है, इधर चला जाता हूं, हमें क्या लगता है कि उधर ठीक रहेगा, पे स्केल बढ़ जाएगा तो मेरी जो नीड्स हैं सॉरी डिजायर्स हैं वो पूरी कर पाऊंगा, तो उसको जॉब चेंज करके वो दूसरी जगह जाता है, तो पता चलता है उधर भी बड़ी सारी स्ट्रगल है, उधर भी बड़ी दिक्कत है, सैलरी तो मिल रही है बेशक 5-10 हजार ज्यादा मिल रही है या अच्छा पैकेज मिल गया, लेकिन काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसको छोड़ता कहता और अच्छा पैकेज चाहिए, क्योंकि इससे मैं होटल में नहीं खा पा रहा, इससे तो बस घर में खाना पड़ रहा, परांठा रोटी जो भी है, तो और अभी कमाने की कोशिश करता। फिर कहता मैं फैक्ट्री लगाऊंगा अपनी, फिर 4 फैक्ट्री लगाऊंगा अपनी, फिर 4 फैक्ट्री भी करना, क्योंकि 4 बच्चे भी है उसको, एक एक देता है वो, और चाहता है कि मैं और भी कुछ करूं, एक की जगह 4 गाड़ी रखूं, इस प्रकार उसका लोभ खत्म नहीं होता। और इस प्रकार जब धन्यवाद लोग धनी बन जाते हैं तो बाद में ओपेरा जैसे उसमें इंटरव्यू देते हैं, जैसे वो थी कौन प्रिंसेस डायना, तो क्या बोलती थी कि मैं जिस पोजीशन पर हूं जिस स्तर पर हूं जितनी मैं राजकुमारी जैसे हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पोजीशन में सुख नहीं है, मुझे लगता है कि एक गरीब घर की छोटी सी लड़की वो ज्यादा सुखी है, इसलिए मैं चाहती हूं मेरा अगला जन्म ऐसे परिवार में फ्रीडम हो घूमने की खाने की अपने हिसाब से जीने की। सेलिब्रिटी लगता है सारे लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, लेकिन उन सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लो तो माइकल जैक्सन कहते हैं कि आई स्लीप लाइक अ चाइल्ड, मैं बच्चे की तरह सोता हूं, एंड आफ्टर एवरी 2 आवर्स आई गेट अप एंड क्राई, मैं रोता हूं 2-2 घंटे में उठकर, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा अकेला फील करता हूं, अकेला बाहर निकलता हूं तो लोग कपड़े फाड़ते हैं, लड़कियां पीछे पड़ जाती हैं, फैंस घूमते हैं मेरे पीछे, मैं रह नहीं सकता उनके पीछे, तो मैं अकेलापन की वजह से। जितने बड़े बड़े लोग इस धन को इन सब चीजों को बढ़ाते हैं अपने पास वो संतुष्ट नहीं रह पाते। इसी श्लोक में कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कितना ही धन मिल जाए या भोग की चीजें मिल जाएं, संसार भर की मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब लोग यहां परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, यहां पर ज्यादा सुख नहीं भोग पाते क्योंकि यह लिमिटेशंस हैं। आपको खाना पसंद है लेकिन पेट आपका उतना ही, 2 किलो की लिमिट है उसमें, 1.5 किलो की लिमिट है, आप ज्यादा नहीं डाल सकते। आप ज्यादा डालते हो तो इधर हैवी हो जाता, बहुत ज्यादा हैवी, अभी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार चला गया, खूब खाया, लोभ था बड़ा, खाता रहा और अचानक खा के गिर गया वो ड्रॉम। लोग उसको उठा के लेकर स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा वही इसकी बड़ी बुरी हालत है, पेट जगह से फूला पड़ा है, क्या करें इसके साथ। डॉक्टर ने कहा खड़े हो जाओ, थोड़ा सा उठाया उसको, कहते पकड़ो गोली पानी के खा लो। कहते क्या, कहते पूरी है, कहता हाँ, कहता मुंह में जगह होती तो ये नहीं डाल लेता, पेट में जगह होती तो ये पूरी खा लेता, तेरी गोली को खाता, इतना लो। तो ये जो बता रहे हैं पतंग मातंग तुरंग फिरंग, ये हम लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं कि हर इंद्रिय का एक एक क्या है, सेंस सब्जेक्ट, जो हमें मृत्यु की ओर लेके जाता है, अल्टीमेटली मृत्यु की ओर लेके जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो क्या करें इसको खत्म करने के लिए, इस लोभ को बंद करने के लिए, नुकसान तो पता चल गया, इसके क्या होते हैं। तो शास्त्र कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ने हल्का सा कोट किया है आखिरी में, लौल्यम एकलम मूल्यम, रूप गोस्वामी जी का श्लोक है। वो कहते हैं कि लौल्यम तो लालच तो हर एक के अंदर है, लेकिन किस चीज के लिए लालच करना चाहिए। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कथा के प्रति हमारी क्या रहना चाहिए, लालच रहना चाहिए, लोभ रहना चाहिए। अगर कहीं पर मिलती हो, कहीं कथा होती हो, तो कह रहे हैं उस भक्ति को लेने के लिए केवल एक ही चीज है, वह लालन। हमारे अंदर है लालच, मालूम है हमें लालच, बट इस संसार में बने रहने के लिए भोगों के प्रति लालच है, उसको वहां से हटाकर कृष्ण कथा में लगाना है कि कहां कथा हो रही है उसके प्रति। भक्त बोलते हैं कि ऐसा लालच होना चाहिए, शास्त्र में बताया कि अगर कोई व्यक्ति इवन धोती पहन रहा हो, उसे पता चले कि ओम नमो भगवते शुरू हो गया है या कथा शुरू हो गई है, तो बेशक आदि है उतरी उल्टा पहने भागो कथा के लिए, ऐसा ग्रीड, ऐसा इंटेंस ग्रीड दिखना चाहिए कथा को। नारद जी जब पिछले जन्म में मेड सर्वेंट के बेटे थे, तो 4 मास जब उन्होंने सेवा करी भक्तों की और उनसे ज्ञान प्राप्त किया और माता का देहांत हो गया, उसके बाद वो जंगलों में गए भगवान का ध्यान करने के लिए, इतना सुंदर ध्यान किया कि भगवान का दर्शन कर लिया हृदय, लेकिन दर्शन देकर भगवान फिर से ओझल हो गया, उसने फिर प्रयास किया, अब नहीं दिखाई दे रहे थे, अब खाली आवाज सुनाई दे रही थी। क्या आवाज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के दूषण से ग्रस्त है, इसलिए तुम इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, तो क्या करूं। कहते अपना हृदय की उस गंदगी को या कंटामिनेशन जो थोड़े स्टेंस रह गए हैं उसको भी खत्म करने के लिए क्या करो, मेरी तरफ उत्कंठा बढ़ाओ, लालच बढ़ाओ। जितना मेरी तरफ, मेरे दर्शन को, मेरी कथा के प्रति तुम्हारा लालच बढ़ेगा, जितनी मात्रा में जिस तेजी से मेरी तरफ लालच बढ़ेगा, उस तरफ से इस संसार के प्रति हमारा लालच या लोभ खत्म होगा। सिंपल का तरीका। तो नाम गाने सदा रुचि, रुचि उत्पन्न करनी किसके लिए, भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए। समस्या क्या होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं, चाहे डिवोशनल एटमोस्फेयर में भी हैं, वहां पर भी लोभ की कमी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं उसको स्पिरिचुअलाइज करने की, कैसे कि भार बड़ा आदमी बनना था, अब भक्ति में आ गए, मालूम पड़ गया कि धन का, भोगों का औचित्य नहीं है जीवन के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। लेकिन कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ओवर टाइम करना शुरू कर दूँ, थोड़ा सा और बिजनेस शुरू कर दूँ, ताकि कल को इतना धन कमाऊं कि मैं क्या कर सकूं, उससे एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदूं और उसमें भक्तों को लेकर जाया करूं, कभी कभार मंदिर ले जाऊं, कभी करो बाकी कमा बाकी समय ये बाकी तो फिर अपने लिए बंद करूं। तो उसको स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश करते, अपना लोभ है कुछ खाने का, यानी ये खाना है बहुत टाइम हो गया, ये नहीं खाया, उधर जाकर नहीं खाया, ये नहीं खाया, चलो ले आओ कर लेते इकट्ठा लगा देंगे भोग, तो उसको स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं। ये उनसे अच्छा है जो उल्टा सीधा खा रहे हैं, उनसे अच्छा है कि कुछ भी ला के लगा रहे हैं, बट ये बहुत अच्छा नहीं है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार भक्तों का लोभ केवल भक्तों के संग में होना चाहिए, कृष्ण की कथा में होना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बोला है कि नर्क के तीन द्वार है, कितने, तीन द्वार, कौन कौन से, काम क्रोध और लोभ, ये तीन दरवाजे हैं कहां जाने के। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुण सुन, ये रजोगुण की वजह से उत्पन्न होता है, लोभ जो है ये जनरेट कहां से होता है, रजोगुण की वजह से। रजोगुण क्या होता है, ये तो अच्छा गुण है, गुण ही तो है, अवगुण थोड़ी है, रजो अवगुण थोड़ी बोल रहे हैं। रजो का मतलब वो, रजस का मतलब वो ऐसा वेग है, ऐसी रस्सी है या ऐसा फोर्स है जो हमें बाध्य करता है कुछ भी सोचने के लिए, हमें फोर्स करता है कुछ भी कर दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। और ये रजोगुण कहां से एंटर होता है, भोजन से, संग से, श्रवण से, इन्हीं सब इंद्रियों से ये रजोगुण उत्पन्न होता है। जब हम लोग ऐसे लोगों का एसोसिएशन करते हैं जो खुद रजोगुणी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बहुत इच्छाएं हैं, ये करना है वो करना है, ये कर दिखाएंगे वो कर डालेंगे, वहां जाएंगे फिर ये खाएंगे, फिर जैसे आप उनके संग में जाओगे आपको कि हाँ यार मैं ही पागल हूं कि मैं ना जाऊंगी, चलो मैं भी चलता हूं, रजोगुण का संग लिया, रजोगुण व्यक्ति का संग किया, तो रजोगुण की संगति की वजह से हम भी दूषित हो जाएंगे। श्रवण कर लिया रजोगुण के विषय में, कुछ सुन लिया, फिल्मी सॉन्ग फिल्में देख ली, उसमें ये होता है उनका ऐसा मकान था, उसमें ये डिजाइन था, ऐसे कपड़े पहने थे, ये था वो था, तो रजोगुण उत्पन्न होता है कि हाँ मैं भी करूंगा, इच्छाएं डेवलप होती है। भोजन, रजोगुणी भोजन, अधिक मिर्च मसाले तीखे चटपटे उष्ण तीक्ष्ण गर्म, इस प्रकार का भोजन करने से रजोगुण अंदर उसमें वृद्धि होती है, मन विचलित रहता है, हर समय कुछ ना कुछ सोचता है, फिर जैसे किसी विषय के विषय में सोचते हैं तो क्या होता है, ध्याय तो विषयानुपुंसा, और अधिक सोचना शुरू करते हैं, बार बार कंटेम्पलेट करते हैं, बार बार सोचते हैं, उस पर्टिकुलर सेंस सब्जेक्ट से अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट होने की वजह से उसको प्राप्त करने की इच्छा स्ट्रांग हो जाती है, और ये पूरा शरीर फिर उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये रजोगुण समग्र हुआ, उसकी वजह से ये सब होता है, और ये लोभ ही है जो हम लोगों को और दूसरे अनर्थों में भी फंसाता है। लोभ होता कुछ करने का, वो पूरा नहीं हो तो क्रोध भी आएगा, है ना, और काम भी बढ़ता जाएगा, अन्य प्रकार के घमंड इत्यादि बढ़ेगा, हर चीज बढ़ेगी, सारी चीजें होंगी। तो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो रजोगुण का त्याग करें। भगवान कृष्ण तो सतोगुण से भी उठने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम से कम रजोगुण से हम लोग सतोगुण में आने का प्रयास करें। सतोगुण में कैसे आएंगे, सुबह जल्दी उठना सात्विक समय है, सुबह कोई व्यक्ति उठ के बुरे काम करते ही नहीं, होते ही नहीं, उससे मन बड़ा साफ रहता है, उज्जवल रहता है, बिल्कुल ठीक ठीक लगता है, तो अचानक ही मतलब स्वभाव से ही वो डिवोशनल होना प्रयास करता है, माला करेगा, दर्शन करेगा, मंगला आरती आएगा, डीटी वर्षिप करेगा, तो ये सतोगुण की वृद्धि करता है। अगर उठेंगे ही 9 बजे जो कि रजोगुण का समय है, तो अचानक फोन कॉल, ये अचानक रजोगुण, भागना है, दौड़ना है, पैसा कमाना है, ये करना है, पेमेंट लानी, पेमेंट देनी, माल इधर करना, वो करना है, दुकान खोलनी, पता नहीं क्या क्या शुरू है, तो रजोगुण बढ़ जाता है बहुत तेजी से। और शाम का समय तामसिक है, सारे बुरे काम समय होते हैं, तो क्या करना है, सतोगुण की वृद्धि करनी है। सतोगुण की वृद्धि होगी जब सात्विक लोगों का संग करेंगे, जो खुद मंगला आरती आते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, दर्शन मतलब अपना घर में श्रृंगार इत्यादि करते हैं, जप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, मंदिर आके कथा सुनते हैं, 9 बजे से पहले सारे काम करते हैं अध्यात्म। इसको ऐसा करने से क्या होता है, सत्वगुण मेंटेन रहता है दोपहर के टाइम पर भी, तो रजोगुण हावी नहीं होने देता और ठीक ढंग से वो बुद्धिमानी से सारे डिसीजन लेता है। तो सत्वगुण की वृद्धि कर, भोजन कैसा करना है, सात्विक वृद्धि का, भगवान को भोग लगाएं, फल शाक वेजिटेरियन टाइप का जो है सबको भगवान को भोग लगाएं और सात्विक वृद्धि का कम मसाले वाला भोजन करें तो ये सत्वगुण की वृद्धि करेगा। भगवान के नाम का जप करें, अध्ययन करें, यह सत्वगुण की वृद्धि करेगा। विशुद्ध सत्व का है वैसे तो सारा जो हम बता रहे हैं मटीरियल, बट हमारे में सत्वगुण की वृद्धि होगी तभी हम लोग विशुद्ध सत्व को समझ पाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग उस लोभ से, उस लालच के कंटामिनेशन से बच सकते हैं, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो साइकिल है ये चलता रहेगा, यह आंकड़ा कभी खत्म नहीं होगा। और क्या होगा, फिर इस संसार में वापस आना पड़ेगा। क्या करना है, केवल एक लाइफ टाइम, क्या करना है, सेंस कंट्रोल करना है। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में जो हमने पढ़ा, उसमें बता रहे हैं जो आत्मतुष्ट हैं वो अपने कर्मों को प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से देखते हैं। इसके बाद लिखा था क्षमा कीजिए, आत्मतुष्ट व्यक्ति केवल जल पीकर भी सुखी रह सकता है, यह बहुत ऊंचा स्तर है। जिस स्तर में व्यक्ति को इस संसार में सेंस सब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, भोजन प्यास इन सब चीजों से व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं, यह हमें मुश्किल लग सकता है लेकिन यह सब होता है। जैसे इस संसार में कई क्रांतिकारी हुए, कई पदों के लिए लोलुप है, पोस्ट के लोलुप है, कुछ अपना विशेष काम करवाना चाहते हैं तो हमारे नेता भी कई बार क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, है ना, क्योंकि पीछे ध्येय क्या है, ये पोस्ट चाहिए, दुनिया मुझे देखे, मीडिया कवरेज मिले, तभी तो मिलेगा जब ये सब करेंगे। तो कुछ लोभ के लिए, कुछ लाभ के चक्कर में वो भी ये कर लेते हैं, थोड़ी सी तपस्या करकर। कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जो जेलों में कुछ नहीं खाते थे, 30-40 दिन तक पानी पी के रह लेते थे, लेकिन इनका उचित उद्देश्य होता था देश को आजाद करा दें, प्रधानमंत्री बन जाएं, सीएम बन जाएं, ये सब रहता है। लेकिन जिन भक्तों का टेस्ट हरि नाम में है, जो भगवान के भक्त हैं, जो आत्मतुष्ट हैं, आत्म साक्षात्कार के स्तर पर हैं, तो उनका शरीर भी सिद्ध हो जाता है, सिद्ध देह हो जाता है, आत्मा आत्मरूप हो जाता है, अर्थात उनको इस संसार के जो भौतिक तत्व हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती अपने को संतुष्ट करने की। इसलिए कई बार आप देखेंगे जब हम लोग सेवा करते हैं, ज्यादा हरि नाम लेते हैं, सही चेतना में करते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा खड़े हो जाएं, चाहे डांस कर लें, चाहे खूब सेवा कर लें, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है, किसी के साथ हुआ ऐसा नहीं हुआ, हाँ, कई के साथ हुआ ना। तो ये ग्लिम्स है, छोटा सा एक वो, कि जब हम लोग इस प्रकार करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त हैं हर समय, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती इन सब चीजों की, और वो शरीर को रखते भी है तो इसलिए कि भाई आत्मा तब तक रहे जब तक इसको अपना काम करना है, भक्ति करनी है, इसलिए वो इतने ही इकट्ठा करते हैं जितना वो आत्मा शरीर को साफ रख सके। तो यहां बता रहे कि भागवतम कह रहे हैं कि पानी पी के भी सुखी रह सकते हैं, उसको चिंता नहीं है, उसको मालूम है ठीक है। अब पानी का मतलब ये नहीं है कि हम भी पानी पे रहे, हमारे को अगर आसानी से भोजन मिल रहा है पेट भरने के तो ले सकते हैं ताकि जब कर सके तब कर सके। और जो व्यक्ति इंद्रियों द्वारा चलित है, विशेष रूप से जो जीव और जनेन्द्रियों के वश में रहता है, उसे अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए घरेलू कुत्ते का पद स्वीकार करना पड़ता है। इसको इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कुत्ते का, क्योंकि पशु और जीवन जीता व्यक्ति से अपने इंद्रियों के वश में आकर, और जो कंट्रोल वे में जीता है लाइफ को, इंद्रियों का गुलाम ना बनकर इंद्रियों का राजा बनकर जीता है, उसकी इंद्रियां बोलती ये खा लो, ये कर लो, वहां चलते हैं, ये करते हैं, और इकट्ठा करते हैं, कहते नहीं रूप गोस्वामी जी मना करते थे, अधिक उद्यम नहीं करना, इतना परिश्रम मत करो कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो काफी मेहनत करने के बाद मिलता है। इतनी मेहनत अगर भगवान के लिए करते, मैं तो हैरान हूं आजकल के बच्चों को देखकर जो स्कूल में इतनी स्टडीज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कुछ मार्क्स के आने के लिए। अगर बच्चे ट्रेंड हो या व्यक्ति ट्रेंड हो इतनी मेहनत भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो गारंटी है इसी जन्म में जाएगा 100%। जितना हम लोग पढ़ते हैं, कितने कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने पढ़े 10 घंटे पढ़ते हैं भाई, आईआईटी में एडमिशन लेने तो 10 घंटे में आईआईटी गया है, 10-10 घंटे सीए करते हैं 12-12 घंटे। मैं जब मैंने सीए में एंटर किया तो मुझे किसी ने बोला कि आपको इतनी देर बैठना पड़ेगा कि बैठे बैठे निशान पड़ जाए, इतना पढ़ना पड़ेगा। इतने का क्या बात करें, मैंने हरे कृष्णा कर दी। 12 घंटे तो इतनी मेहनत, 16 घंटे अभी हम जब करते हैं, रीडिंग करते हैं, कितनी देर, 2-3 घंटे। अगर व्यक्ति 10-12 घंटे करने लग जाए, 192 माला हो जाती है, 150-200 माला हो जाती है, अध्ययन हो जाता है, 100% प्रेम डेवलप हो गई होगा रुचि की स्टेज में 6 महीने में। प्रेम क्यों नहीं डेवलप होगा? बचपन से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक कितने घंटे लगा रहे भाई, कर देखिए। तो अगर यही चीज, अगर डिवोशनल माता पिता हो, भक्त माता पिता हो, तो क्या करेंगे बच्चे को इस प्रकार बोलेंगे, बेटा क्या करना है तेरे को? कईयों के अपने बिजनेस भी हैं, वो बोलते हैं नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, फेल भी हो जाए तो अपने को कोई दिक्कत, टीचर को थप्पड़ भी मारेगी, ऐसे भी लोग हैं। अगर ये व्यक्ति भक्त होता तो कहता बेटा पैसा है, नो डोंट वरी, पढ़ाई में इतनी टेंशन मत लगा, अल्टीमेटली यहां टेंशन दे, यहां टेंशन दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन हम उसको ये बोलते कि कुछ जरूरत नहीं है, पैसा बहुत है, खा कमा ऐश कर, मैंने खूब पाप करें तब जाके इतना कमाया, मैं तो नरक जाऊंगा, बट तू उसको यूज करियो, तू अपने हिसाब से पाप करियो, फिर तू मेरे पास वही आई हो, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं बेटा। गलत तो नहीं बोल रहा, होता तो यही है ना भाई, पैसा को कितनी मुश्किल, एक नंबर से कौन कमाता है, बड़ा मुश्किल है, एक नंबर से तो आप दाल रोटी चावल आराम से खा पाओगे, जो प्रारब्ध में लिखा है वो आराम से मिलेगा, दैट्स ऑल। क्या मिलेगी? पूर्ण शांति। हाँ महाराज, आपको तो शांति है, शांति किस चीज की? हाँ मिलेगी ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार हम लोगों को समझना पड़ेगा ये बात कि ये चीज हमें फोर्सफुली पाप करवाती है। तो हम लोगों को अगर अपनी इंद्रियों को, अपने मन को ठीक डायरेक्शन में लगाना भी है तो कहां लगाना है? वो भगवान की भक्ति में, श्रवण में, यहां लालच दिखाना, यहां लोभ दिखाना, तब जाके हम लोग इस लोभ के चुंगल से बचेंगे और भगवान के करीब पहुंचेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न ये जिज्ञासा है? हाँ जी,
कृष्ण, फिर जैसे आपने लालच के बारे में बताया, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में लालच एक स्वाभाविक है, तो लालच के बिना बिजनेस होना बहुत मुश्किल है।
बिल्कुल,
लालच होगा तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, और इसकी लिमिटेशन को कैसे निर्धारित करेंगे?
बड़ा सुंदर प्रश्न है और बड़ा प्रैक्टिकल है। कई बार लेक्चर में ऐसी चीजें सुनते हैं जो लगता है हो नहीं सकता। ठीक है, वो 8 से 9 तक के लिए ठीक है, बाकी 9 से 9 मैं अपना वही करूंगा जो मुझे करना है ना। तो अब बिजनेसमैन है, हम बच्चे से बच्चों की पढ़ाई का बता रहे, बिजनेसमैन को भी रहता है कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करना है, मेरी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पूरी करनी है। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके पीछे उसका लाभ भी रहता है कि मुझे लाभ भी मिले, लाभ और फिर साथ में लोभ भी टच हो जाता है, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो व्यक्ति कहता है थोड़ा सा और क्या दिक्कत है, और बढ़ा सकते हैं बिजनेस, और कर लें, अगर 2 फैक्ट्री की जगह 4 फैक्ट्री भी हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भक्त को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि हम लोगों को कितना समय देना है उसमें। अगर हमें 8 घंटे 6 घंटे काम करना है तो करना है। अब 8 घंटे 6 घंटे में अगर आराम से मैंने 10 फैक्ट्री भी खोल दी तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे। लेकिन अगर आपको एक से दूसरी फैक्ट्री करने के लिए आपको 12 घंटे लग रहे हैं और तीसरी फैक्ट्री करने के लिए 16 घंटे लग रहे हैं और चौथी फैक्ट्री के लिए 24 घंटे लग रहे हैं तो क्या फायदा है इससे? तो हमें अगर शुरुआती समय में लोभ है भी बिजनेस का, पैसों का, तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के संरक्षण में रहकर उनसे पूछते रहना चाहिए कि मैं कितना आगे बढ़ूं, कैसे आगे बढ़ूं। एल्फ्रेड फॉर्ड, फॉर्ड कंपनी के जो ऑनर है इस समय, जब वो प्रभुपाद से आकर्षित हुए, उनकी टीचिंग से आकर्षित हुए, उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप अपना बिजनेस करते रहिए, बिजनेस कीजिए, साथ में मेन बिजनेस पर भी ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, नियमों का पालन करें, भक्ति भी करें और क्या करें, साथ में बिजनेस भी करते रहे। तो आज भी कंपनी, फॉर्ड कंपनी एग्जिस्ट करती है, मेन कुछ कंपनी में वो है, शुमार है, और वो धन कमाते हैं क्योंकि भक्त हैं, इसलिए क्या करते हैं, उस धन का सदुपयोग करते हैं। उस धन को क्या लगाया उन्होंने, मायापुर प्रोजेक्ट में लगभग 250-300 करोड़ रुपया। उनका नाम है अम्बरीश दास, अम्बरीश प्रभु, और इतने सिंपल हैं। हम गए थे प्रभुपाद जी के डिसअपीयरेंस डे में, तो ऐसे घूम रहे, धोती कुर्ता पहने साइड में बैठे थे, उनको कोई कुर्सी जाने करती, कुर्सी नहीं, मिट्टी के उसमें बैठे हुए। सो सिंपल। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं अधिक परिश्रम नहीं करना अननेसेसरी। आप खाने तो भी दो रोटी है, बिल गेट्स भी दो खाता है, दो की रोटी खाता है, दूसरा भी खाता है, गरीब भी दो खाता है, रिक्शा पुलर भी दो खाता है, अरे सबने दो ही खानी है, दो ही टाइम खाना है। तो फिर इंटेलिजेंटली बाकी समय किसमें लगाएं, भक्ति में लगाएं, भक्तों के संरक्षण में रहें, उनसे पूछें कि आप बताइए क्या मेरा लोभ है और क्या मेरी नीड्स है। क्योंकि कुछ तो नीड के लिए करना है, कर्तव्य के लिए करना है, तो भक्त बताए कि हाँ इतना तुम्हारा कर्तव्य है, इतना कर रहे हो, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो जी मैं फिर आज के मंदिर आना बंद हो गया, क्या हो गया? तो जी आपने कहा था ना बिजनेस कर रहा हूं। अरे भैया मंदिर के लिए थोड़ी मना किया था, कितना कर रहे हो बताओ, वो बताएंगे जी इतना करो, नहीं इतना मत करो, इतना करो, इस प्रकार जियो ताकि अपना असली बिजनेस कर सको, है ना। तो लिमिट भक्त लोग बताएंगे, और जो भक्त हैं उनको खुद भी पता चल जाता है कि मेरी लिमिट क्या है, मेरा भला किसमें है, ठीक है। तो कमाने के लिए मना नहीं कर रहे, धन के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका कितना करना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भक्तों को संदेश में पता चला। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। ग्रंथ श्रीमद भागवतम की, श्रीमद प्रभुपाद की, गीता गोर प्रेमानंद की।